अब छठी सूरत जो कमी पेश आती है कि मकरूज तोहफे में कोई चीज आपको दे दे, वो तो जान छुड़ाएगा मेरी चीज ही मैंने वापस कर दी तो दे दूं, तो अगर मकरूज तोहफा दे तो क्या है। बाज़ लोग कर्ज लेने के बाद उधार देने वालों को तहाइफ देते हैं, ऐसे तहाइफ का कबूल करना नाजायज है। इस बारे में एक हदीस और सहाबा के अकवाल। पहली चीज, इब्ने माजा और इमाम बहकी ने हज़रत अनस से नकल किया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम में से कोई एक कर्ज दे तो वो यानी मकरूज इसको तोहफा दे या सवारी पर सवार होने की पेशकश करे तो वो ना तो इस पर सवार हो ना ही इस हदीये को कबूल करे। हाँ, अगर दोनों के दरमियान पहले से इस सिलसिले में कोई दस्तूर राइज है तो फिर कोई मज़ायका नहीं, यानी दोस्त हैं पहले ही इकट्ठे आते जाते हैं, उसी की गाड़ी में आता है, या मतलब ये कि ये कोई नई डील ना हो, पहले से ऐसा होता है, इट्स फाइन टर्म्स की बेस पे, लेकिन इसके बोझ के अंदर आकर ऐसा ना हो। अंडर प्रेशर आकर कर्ज लेने वाला कोई तोहफा या कोई राइड या कोई सहूलत देता है तो ये जायज़ नहीं होगी। फिर दूसरी रिवायत, इमाम बुखारी ने अबू बरदा से रिवायत नकल की, वो कहते हैं, मैं मदीना तैयबा हाज़िर हुआ तो मैंने अब्दुल्ला बिन सलाम से मुलाकात की, उन्होंने फरमाया कि हमारे यहाँ नहीं आओगे कि मैं तुम्हें सत्तू पिलाऊं और खजूरें खिलाऊं, और तुम एक ऐसे घर में दाखिल होगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें तशरीफ़ लाए थे। यानी अब इन्होंने हॉस्पिटैलिटी शो की कि मेरे घर आइए, खातिर करूंगा, और आपको पता है कि अल्लाह के नबी भी मेरे घर आ चुके हैं। तो इस पर उन्होंने फरमाया, तुम ऐसी सरजमीन में हो जहाँ सूद आम है, जब तुम्हारा किसी पर कर्ज हो फिर वो तुम्हें घास का या जौ का या चारे का एक गट्ठा तोहफे के तौर पर भेजे तो भी ना लो, क्योंकि बिलाशुबा वो सूद है। तकवा का मुकाम है ना। यानी आप यहाँ से ये देखिए कि दूसरे के माल के बारे में इस्लाम कितना ज़्यादा केयरफुल है। फिर इलामा आइनी ने अब्दुल्ला बिन सलाम के इस कॉल में कहा, क्या यानी कर्ज़ ख्वाह का हदिया कबूल करना सूद ही के हुक्म में है, क्योंकि वो इसके लिए हुए कर्ज पर इजाफा है। लेकिन यहाँ फिर जहन में रखिएगा कि अगर पहले से ही रिश्तेदारी, या मिसाल है कि आपने अपने भाई से 1 लाख ले लिया, आप गए भाई एक सूट देते हैं लेके, भाई आए हो कपड़े पहन लो, या अपनी गिफ्ट देते हैं, आप कहते हैं नहीं ये सूद होगा, तो वो सूद नहीं होगा। ताल्लुकात है ना, कोई टर्म्स है, बस सिंपल एक रूल समझ लीजिए कि ला तरर वला दरार। सख्त मामले हैं, इसीलिए आप देखिए कि ये जितने पता चलते हैं जिंदगी इतनी मुश्किल लगती है, पता ना हो ना आप मक्खी भी निकल जाएंगे, कीड़े भी खा जाएंगे। एक वीडियो क्या मैंने देख ली, उस दिन के बाद मैं चाय पीती हूँ तो मुझे अंदर से कुछ दिखता है। आप देखिए वो जुलेमन वाली कोई किसी ने भेजी है, आई डोंट नो। अब आप देखिए लाशौरी तौर पे अब हर चाय में मुझे कीड़े दिख रहे हैं कि ये क्या होगा ना। तो ऐसी चीज़ें अगर सही भी हैं तो ऐसी तरह इस तरह नहीं करना चाहिए, उस कंपनी वालों को बताना चाहिए, इससे फितना फैलता है। तो अब ठीक भी पीते हुए दिल ख़राब हो रहा है, वल्ला ही जिस दिन से मैंने वो देख ली है, तो ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है। ऐसी गलत चीज़ों को, और लोग कहते हैं इसको अगर ना भेजा तो पता नहीं आप मुसलमान ही नहीं है। दूसरों से शेयर करो, दुनिया में कोई एक बंदा भी ना रहे जिससे तुम शेयर ना करो, तुम्हारे ईमान का तकाजा है, तुम्हारे इस्लाम का तकाजा है, बेवकूफ़ी का भी यही तकाजा है। तो गलत चीज़ों को सरेआम नहीं खोलना चाहिए। चलिए एक और रिवायत, इमाम अब्दुल रज़ाक ने इब्ने अब्बास से नकल किया, फरमाते हैं, जब तू किसी आदमी को कर्ज़ दे तो इससे पाए का भी तोहफा कबूल ना कर। अब हमारे यहाँ तो पाए बड़ी अहम चीज़ है, इस शिकागो ट्रिप में कोई एक दिन नहीं बचा जिसमें पाए ना खाए हों, हर घर में पाए, हर जगह पाए। मैंने कहा यहाँ बड़े आला पाए के लोग हैं कि आप हर जगह पाए बड़े बनाते हैं, तो बस वो एक कल्चर होता है जिस कल्चर में थे वहाँ हो सकते हैं पाए बहुत बनते होंगे। अरब लोग इसको हल्की चीज़ समझते थे, तो खुर जैसे बकरी का खुर कुरा कहते हैं इसको। फिर इमाम बहकी ने इब्ने अब्बास से नकल किया, उन्होंने इस शख्स के बारे में फरमाया कि जिसके एक दूसरे शख्स के ज़िम्मे 20 दिरहम थे, इस मकरूज ने इसको तहाइफ देने शुरू किए। ऐसे लोग फिर तोहफे क्यों देते हैं, तोहफा ले लो कर्ज ना वापस मांगो, अच्छा ज़रा मैं मोहलत दे दो, यानी ये किस्म का दूसरे को राम करने वाली बात है ना कि तुम्हें रिलैक्स कर रहे हैं, तो इस सूरत में फिर ये सही नहीं होते। और जब भी वो इसको हदिया देता तो वो कर्ज़ ख्वाह इसको फ़रोख कर देता, यहाँ तक कि फ़रोख्तगी से जमा शुदा रकम 13 दिरहम हो गई। इब्ने अब्बास ने शख्स को फरमाया, अब तुम इससे सिर्फ 7 दिरहम लो। अंडरस्टैंड किए बात आपने, यानी इसको आप अपने ऊपर लेकर देखिए कि आपने अपनी दोस्त से तोहफा लिया, ठीक है, अब वो आपसे कहती है मेरे कर्ज़ वापस करो, तो वो कर्ज़ नहीं देती लेकिन आपको कोई ये किताब ले दी, आपको कुछ दी, अब बाहर गई आप इस किताब को बेच के आई, आपको 10-12 डॉलर मिल गए इसके, मिसाल है, तो वो कहते हैं कि वो उसकी असल रकम में से काट लो, तोहफा नहीं कबूल करो, वो उसके हिसाब से काट के सिर्फ 7 दिरहम वापस लो। तकवा है ना, वरना तो ये बातें बहुत मुश्किल हो जाती हैं माननी और समझनी। इमाम बहकी ने सालम बिन अबिल जोद से रिवायत नकल की, कहते हैं उन्होंने बयान किया, हमारा एक पड़ोसी मछेरा था। मछेरा कौन होता है? जो मच्छर पालता है। मच्छर तो नहीं पालता, फिशर। किसी शख्स के इसके ज़िम्मे 50 दिरहम थे, वो इसको मछली बतौरे तोहफा देता रहा। कर्ज़ देने वाले ने इब्ने अब्बास की खिदमत में हाजिर होकर इस बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया, जिस कदर मछली इसने बतौर तोहफा तुम्हें दी है, इसकी कीमत असल रकम से काट दो। सुभान अल्लाह। फिर इसी तरह इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अबू इसहाक़ से रिवायत नकल की कि एक शख्स इब्ने उमर की खिदमत में हाजिर हुआ, कहा, बेशक मैंने एक शख्स को कर्ज़ दिया था तो इसने मुझे तोहफ़ा दिया। आपने फरमाया, इसका तोहफ़ा इसको वापस कर दो या इसको इसका बदल दो, यानी फिर जो तोहफ़ा उसने दिया उस तरह का तोहफ़ा तुम भी उसको दे दो। एक दूसरी रिवायत में आता है, या इसके ज़िम्मे जो कर्ज़ है इसमें से इस तोहफ़े की कीमत को शुमार कर लो। इमाम मालिक इस बारे में कहते हैं, पहले से मुरव्वजा बाहमी मामला या हदिया देने के किसी नए शरई सबब के बग़ैर मकरूज़ का तोहफ़ा कबूल ना किया जाए। देखिए, उसको ये रग़बत दिलाई जाए कि आप हमारे तोहफ़े पे पैसे लगाने की बजाय कर्ज़ ही की अदायगी की फ़िक्र कीजिए। अब ये बातें करते हुए मुझे कुछ माशरती नॉर्म्स याद आ रहे हैं, जैसे मसलन किसी जगह शादी हुई, फिर शादी होके रिश्ता टूट गया, अब वो लड़की का जो सामान और जहेज या कुछ भी ऐसी जैसी चीज़ें होती है ना, तो उन्होंने उसमें से वापस ना की। क्या कहा? लड़के की पढ़ाई पे जो पैसा लगा था वो हमने उसके बदले में ये चीज़ें रख ली। भाई, अगर लड़के की पढ़ाई पे लगा था तो उस लड़की का क्या कसूर था? बस लोग ये भी कहते हैं कि लड़की वालों से क्यों लो ये सब जहेज के नाम पर, क्योंकि हमने भी तो अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया, तो तभी तो वो इतना बड़ा अफसर बना है, वो कमाएगा तो ये सारा पैसा लड़की को ही फ़ायदा होगा ना। तो भाई, आप अब दूसरों से तो नहीं लेंगे ना। तो ये छोटे छोटे मामले जो होते हैं इसमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। फिर इसी तरह से इलामा शोकानी कहते हैं, सारी गुफ्तगू का हासिल ये है कि बिला शुबा अगर तोहफ़ा देना या आरियतन, आरियतन किसको कहते हैं? उधार, ठीक है, कोई चीज़ देना या इसी तरह की कोई और सूरत इख्तियार करना कर्ज़ की वापसी की मुद्दत में आसानी के लिए हो, या कर्ज़ देने वाले को रिश्वत देने की गरज से हो, या कर्ज़ देने वाले को कर्ज़ देने के इवज़ कुछ फ़ायदा पहुंचाने की खातिर हो, तो ऐसा करना हराम है, क्योंकि ये सूद की किस्म है या रिश्वत की, और वो दोनों ही हराम है। और अगर ये सूरतें उधार लेने और देने वाले के दरमियान पहले से मौजूद थी तो फिर कोई हर्ज नहीं है, और अगर ऐसी सूरतें अख्तियार करने का कोई मकसद भी ना हो तो ज़ाहिर बात यही है कि ये हराम है, क्योंकि इस बारे में ममानियत मुतलिक है। तो खुलासा क्या निकला इस 6 नंबर पॉइंट का, कि अगर पहले से लेन देन चलता है, लेन देन दुनिया के मामले हैं, तो इट्स फाइन, लेकिन एक नई डील है और उसके बाद सिर्फ तोहफ़ा देकर आप उसकी मुद्दत को ज़रा डिले करा रहे हैं या उससे कुछ करें, तो फिर इसकी इजाज़त नहीं है। बात वाज़ेह। अब अगला देखिए, मकरूज़ से खिदमत या मेहमानी लेना। अब ये वो मिसाल आ गई जो अभी मैंने आपको मासी की दी। अलामा इब्ने कुदामा ने इमाम बिन अबी मूसा से रिवायत नकल की, कहते हैं कि अगर इसने दूसरे शख्स को कर्ज़ दिया, फिर इससे कोई ऐसा काम लिया जो कि कर्ज़ देने से पहले नहीं लेता था, तो ये वो कर्ज़ है कि इसने फ़ायदा कमाया, और ऐसा कर्ज़ देना हराम है। और अगर इसने कर्ज़ ख्वाह की मेहमानी की और इससे पहले इसके दरमियान ऐसी सूरत ना थी, तो कर्ज़ ख्वाह ने जो खाया इसका हिसाब किया जाएगा, यानी खाने के बकदर रकम मकरूज़ के कर्ज़े से हटा दी जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो बस यही दुआ करें कि किसी से लेन देन पड़े ही ना। आप देखिए, ये मैंने जो जुमला पीछे शुरू में बोला था, ये कोई ऐसे ही नहीं बोल दिया था कि डीलिंग्स और मामले, और ख़ास तौर पे माली मामले जो है ना, ये दुनिया की बुलसरात है। जैसे आखिरत की बुलसरात पे इंसान फिसल फिसल जाता है, वहाँ जाके इंसान को मुश्किल पड़ेगी, इसी तरह से इस दुनिया में भी यही हालात है। अल्लाह का हक भी पूरा करें, अल्लाह तो हक रखता है कि हम उसके हक को पूरा करें, लेकिन अगर मैं और आप सिर्फ अपनी दुनिया की चीज़ों को देख लें और इन चीज़ों पे रखें, तो इन चीज़ों को देखते हुए तो खौफ आने लगता है कि मुझे और आपको इन चीज़ों से बचाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अहम तरीन टॉपिक अभी तक के पढ़े हुए टॉपिक्स में से कम करेंगे, कर्ज़ की ज़कात। इसमें बड़ी गलतियां खाते हैं हम लोग, यानी जो हमने किसी को कर्ज़ दिया हुआ है तो क्या हम उसकी ज़कात साल के एंड पे देंगे, या किसी से हमने कर्ज़ लिया अब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ज़कात कौन देगा? इसमें बहुत सारे इश्यूज़ आएंगे इंशाल्लाह, इंटरेस्टिंग इश्यूज़ हैं। कर्ज़ की ज़कात पेज 205 है, हर एक की बुक में फ़र्क है, मेरे एक बुक में 167 है, एक में 205 है। कर्ज़ के माल की ज़कात के बारे में क्या है? एक मसला क्या है कि बतौर कर्ज़ दी हुई रकम या चीज़ की ज़कात कौन देगा, राइट? आप कहते हैं ना, ज़कात एक मनी जो आज से लेकर पूरे साल तक आपके पास रही, एंड पे उस पे ज़कात। ठीक, अब आपने किसी से कर्ज़ लिया एक साल के लिए, आज की डेट पे लिया था 2015 में, तो वो पूरा साल रकम आपके पास रही ना। अब वो रकम थी किसी और की, रही आपके पास, तो जब एंड पे आप हिसाब करेंगे ज़कात का, तो आपके दिल में क्वेश्चन आएगा कि इस पैसे की करूँ कि नहीं। और जिसने आपको दिया था वो भी एक साल का हिसाब करता है, अपने पैसे लिखता है, तो वो सोचेगा थे तो मेरे ही, तो दिए हुए तो मैंने उनको थे, मेरे पास तो नहीं, तो फिर क्या मैं उसकी ज़कात दूंगा नहीं। ये सवाल, यानी एक बैग इश्यूज पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। क्या मकरूज़ कर्ज़ की ज़कात अदा करेगा या कर्ज़ देने वाला करेगा? तो पहले को देखते हैं, क्या मकरूज़ लिए हुए कर्ज़ की ज़कात अदा करेगा? उलमाए उम्मत ने अमवाल को दो किस्मों में तकसीम किया, यानी देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ दी मनी। पहली किस्म है अमवाले बातिना, जैसे नकदी, सोना, चांदी और सामान तिजारत। दूसरी किस्म है अमवाले ज़ाहिरा, जैसे चौपाए, गल्ला, फल। आप देख रहे हैं ना कि बातिना क्या, कि ये नकदी, ये पैसा पड़ा रहता है, ना आपसे खाने को मांगता है ना पीने को मांगता है। सोने की डली है, चांदी है, वक्त का रेट है उसका, सामान तिजारत है। लेकिन ये जो चीज़ें ना चौपाए, खाने को मांगेंगे ना, गल्ला है, हासिल करना है तो उसको मेहनत करके हासिल करेंगे, या ख़राब होने का डर है, फल, तो इन दोनों पे डिफरेंट थिंग्स होंगी। कैसे? जमहूर उलमा के नज़दीक अमवाले बातिना वाले मकरूज़ पर कर्ज़ की ज़कात नहीं है। यानी पहली जो सूरत है, नकदी, सोना, चांदी, इसके बारे में क्या है, मकरूज़ कौन है? जिसने कर्ज़ लिया, वो इसकी ज़कात नहीं देगा। कर्ज़ की चीज़ या रकम को इसकी ज़ाती काबिले ज़कात रकम में शामिल तसव्वुर नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर, अगर इसके पास कुल 2 लाख रुपए हैं, जिसमें 1 लाख ज़ाती और 1 लाख कर्ज़ के हैं, तो सिर्फ 1 लाख की ज़कात अदा करेगा, 2 लाख की नहीं करेगा। बात ठीक है? ऐसी इस सूरत में कुल मौजूद 2 लाख है, लेकिन ज़कात 1 लाख पर होगी, क्योंकि उसकी असल में 1 लाख है। और अगर इसके पास कुल मौजूद 1 लाख है और वो 1 लाख ही का मकरूज़ है, तो इस सूरत में इस पर सिरे से ज़कात फ़र्ज़ ही नहीं होगी, क्योंकि इसकी हकीकी हैसियत सिफर है। इतनी बात भी वाज़ है ना, यानी कर्ज़ का ही 1 लाख उसके पास है, अपने हैं ही नहीं है, ठीक है, तो फिर उसमें नहीं होगा। या अगर 1 लाख इसके पास है लेकिन उसने किसी का 1 लाख कर्ज देना है, तो असूलन तो उसको क्या कर देना चाहिए कि वो 1 लाख कर्ज में दे दे मकरूज में, लेकिन हो सकता है वो 1 लाख उसके किसी काम में लगाओ। तो जिसके ऊपर 1 लाख ही कर्ज है और उसके पास हाथों में कैश या कारोबार में डीलिंग्स में 1 ही लाख है, तो मतलब वो निसाब से ही निकल गया ना इस ज़कात के। ये राय आयमा, उता, सुलेमान बिन यस्सार, मैमून बिन मेहरान, हसन, नुखई, लैस, मालिक, सौरी, औज़ाई, इसहाक, अबू सौर और इसहाबे राय किए। फिर इसके बाद आयमा कराम में से रबिया, हम्माद बिन अबी सुलेमान और शाफई के जदीद कौल के मुताबिक कर्ज़ की ज़कात मकरूज़ के ज़िम्मे होगी। यानी आप ये देखिए कि अपोजिट हो गया ना, ये इनकी राय उनसे फ़र्क है। चलिए इनको सबको पढ़ के फिर एंड पे तकाबुल होगा। अमवाले ज़ाहिरा कौन कौन से थे? भेड़ बकरियाँ, जानवर और दूसरी गल्ला वगैरह, फल। अमवाले ज़ाहिरा के मुतालिक इमाम अहमद से दो रिवायात नकल हैं। एक रिवायत के मुताबिक इनका हुक्म अमवाले बातिना जैसे ही होगा, यानी मकरूज़ को ज़कात नहीं देनी पड़ेगी, कि इसकी ज़कात मकरूज़ के ज़िम्मे नहीं है। और यही राय फिर ता हसन, सुलेमान, मैमून बिन मेहरान, नुखई, सौरी, लैस और इसहाक की है। ये सब बड़े बड़े आयमाए कराम थे। दूसरी राय आयमाए मालिक, औज़ाई, शाफई की, इमाम अहमद से भी। इसी में सारी बात का खुलासा क्या है? जमहूर उलमा किसको कहते हैं? जमहूरियत से ही सुन लीजिए ना, जमहूर मेजॉरिटी, यानी मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स के मुताबिक अमवाले बातिना वाले मकरूज़ पर कर्ज़ की ज़कात नहीं है। बाज़ उलमा के नज़दीक अमवाले ज़ाहिरा वाले मकरूज़ पर भी कर्ज़ की ज़कात नहीं, और बाज़ के नज़दीक अमवाले ज़ाहिरा वाले मकरूज़ पर कर्ज़ की ज़कात है। बात समझ गए ना, यानी पहली वाली चीज़ में तो कोई शक नहीं है, दूसरी दो सूरतें। अब वजह है क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों नहीं है भाई मकरूज़ पे? वो तो माल से फ़ायदा उठा रहा है। तो मकरूज़ पर कर्ज़ की ज़कात ना होने के दलाइल, हदीसें, दलाइल के कैसे हम जानते हैं कि वो ज़कात नहीं देगा, तो इसके बारे में इमाम मालिक, अब्दुलरज़ाक इब्ने अबी शैबा, बहकी ने साइब बिन यज़ीद से रिवायत नकल की। उन्होंने बयान फरमाया, मैंने उस्मान बिन अफ़ान को खुतबा देते हुए सुना, वो फरमा रहे थे, बिलाशुबा ये तुम्हारा ज़कात का महीना है, बस जिस किसी के ज़िम्मे कर्ज़ हो इसको चाहिए कि वो इसको अदा करे, फिर बाकी की ज़कात अदा करे। एक रिवायत में है, पस जिस पर कर्ज हो पस वो इसको अदा करे और अपने बाकी मानदा मालों की ज़कात अदा करो। बात वाज़े हो गई। इसी तरह हाफिज़ इब्न अब्दुल बर कहते हैं, अच्छा यहाँ ज़कात के महीने का जो बात है ना, नीचे हाशिया पढ़ लीजिए, कि ज़कात के महीने से इनकी मुराद रमज़ानुल मुबारक का महीना है और अदायगी ज़कात के लिए रमज़ान के महीने का तायुन ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि अब ज़कात रमज़ान में निकाले। हासिल शुदा माल पर साल मुकम्मल होने के पेश नज़र किसी भी महीने को ज़कात की अदायगी का महीना बनाते हैं। तो फिर अमूमन लोग रमज़ान में क्यों निकालते हैं? ज़्यादा सवाब। पूरा साल भूखों को रहने दें कि हम रमज़ान में खाना देंगे आपको। खैर, अपना फ़ायदा करते हैं, कभी कभी दूसरे का भी देखना होता है कि ज़रूरत कब है उसको। इसी तरह अल्लामा इब्ने क़ुदामा कहते हैं, उन्होंने सहाबा की मौजूदगी में ये बात फरमाई लेकिन उन्होंने इस पर एतराज़ ना किया, और ये इस बात पर इनकी मवाफ़कत की दलालत करती है। ज़कात की फ़र्ज़ियत अग़निया पर है, फ़ुक़रा पर नहीं। यानी गनी लोग ज़कात देंगे, फ़कीर नहीं देंगे। अगर मकरूज़ के ज़िम्मे कर्ज इसके पास मौजूदा रकम के बराबर या इस कदर है कि इसके बाद वो साहिब निसाब नहीं रहता, तो वो फ़ुकरा के दायरे में शामिल होकर ज़कात का मुस्तहिक़ ठहरा। इससे कर्ज़ के माल की ज़कात का मुतालबा कैसे हो सकता है? आप देखें ना कि जो बेचारा ख़ुद ही कर्ज़ ले रहा है, अब ये रियल कर्ज़ लेने वाले हैं ना, वही बात है। आप जैसे आज लोग कहते हैं हम ज़कात तो नहीं देंगे ना, क्योंकि हमारे ऊपर तो बड़े 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 कर्ज़ हैं, और हम कुर्बानी भी नहीं करते क्योंकि हमारे ऊपर तो कर्ज़ है, और हम हज पे भी नहीं जाते क्योंकि हम पे कर्ज़ है। एक वो कहते हैं ना, चोर और ऊपर से सीना ज़ोर। पहले अल्लाह की नाफरमानी के नाम पर, तईशात के नाम पे कर्ज़ लेंगे और फिर कहते हैं कि नहीं, और बाद में तो अल्लाह ना करे ये वक्त आ जाए कि हम तो इतना कर्ज़ और कर्ज़ जिसके ऊपर उसको ज़कात दी जा सकती है। तो कैसे लोग जो बड़े बड़े नामों के साथ जीते रहते हैं, क्या फिर वो लोगों की ज़कात भी लेना शुरू कर देंगे? क्योंकि ज़कात दी जा सकती जिस पर कर्ज़ हो। तो आपको बात वाज़ेह हो रही है कि कर्ज़ मजबूरी का हो और सूरत होगी, कर्ज़ ख्वाहिश का और वांट्स का होगा तो डिफरेंट सूरत होगी। फिर तीसरी चीज़, सदका खैरात तो उस हद तक की जाती है कि इसकी अदायगी के बाद भी अदा करने वाला तवंगुर और गनी रहे। यहाँ तो मकरूज़ पहले ही से फ़कीर है, कर्ज की चीज़ या रकम की ज़कात की अदायगी इसके फ़कर में मज़ीद इजाफा करेगी। यानी पहले ही हैंड टू माउथ है, और कैसे दें। फिर चौथी चीज़, ज़कात की फ़र्ज़ियत नादारों के साथ तआवुन और अल्लाह ताला की अता करदा तवंगुरी, तवंगुरी दौलतमंदी का शुक्र अदा करने के लिए। और यहाँ तो मकरूज़ ख़ुद नादार है और इस्लाम का साबित शुदा ज़ाबिता है, इब्दा बि नफ्सी का थुम्म बिमन तऊल। ये बड़ी खूबसूरत हदीस है, छोटी सी है, कि अपनी जान से शुरू करो फिर इनके साथ जिनकी किफ़ालत तुम करते हो। यानी एक बंदे को अगर किसी को देना है तो पहले अपनी ज़ात को, फिर अपने घर वाले, उनकी किफ़ालत करे, उनको देने के बाद बच जाए फिर किसी और को दे। पता चले घर में तो आप खर्चे के पैसे भी ना दें और बाहर आप बड़े बड़े खैराती काम करते फिरें, तो वो ठीक नहीं होगा। इसके अलावा नादार मकरूस को तो इस कदर तवंगरी मयसर ही नहीं हुई कि इस पर ज़कात वाजिब हो। फिर इसी तरह कर्ज़ की चीज़ या रकम पर मकरूस की मलकियत हकीकी नहीं। देखिए ज़कात है मलकियत पर, राइट? तो जो बेचारा मकरूज़ है वो मलकियत तो नहीं, जिसकी चीज़ है वो किसी वक्त भी आके तकाजा कर देगा। तो बेचारा एक तो कर्ज़ ले रहा है, ऊपर से उस पर ज़कात अदा करे, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। बल्कि वक्ती और ज़ाहरी है, इसलिए मकरूज़ के अफलास की सूरत में कर्ज़ ख्वाह मकरूज़ के यहाँ मौजूद अपने माल का इससे ज़्यादा हकदार होता है। ये बात फिर पढ़ लीजिए, यानी वक्ती तौर पर वो माल उसके हाथ में आया, अब मकरूज़ गरीब हो गया, इसकी सूरत में तो पैसे ख़त्म हो गए, बैंकरप्सी आ गई, तो कर्ज़ ख्वाह कौन होता है? जिसने कर्ज़ दिया। मकरूज़ के पास जाता है, अपनी कोई चीज़ पाता है, ये मसला बीच में पढ़ चुके हैं ना, तो वो चीज़ वो ले जाएगा। छठी रीज़न, जमहूर उलमा के नज़दीक कर्ज़ ख्वाह अपने दिए हुए कर्ज़ की अदायगी, कर्ज़ की ज़कात देने का पाबंद है। यानी जिसका माल है ना वो देगा ज़कात, आगे हम पढ़ेंगे। मकरूज़ नहीं दे रहा, कर्ज़ जिसने दिया है वो देगा। अब कोई कहे अच्छा जी मेरे पास वो पैसे नहीं, मैंने तो दूसरे को दिए हुए हैं, जैसे अब हमने किसी को अपने पैसे कर्ज दिए हुए हैं। ये बात बड़े गौर से सुनिएगा, जब मुझे पहली दफ़ा इसकी समझ आई तो मैं तो घबरा गई। एक प्रैक्टिकल चीज़ आपको बताने लगी हूँ, शायद आपका तवज्जो कभी इस पर ना गई हो। मसलन आपने किसी को $5,000 दिए, किसी गरीब को, उसने कहा मैं दे दूँगी एक साल में, एक 6 महीने में, वट एवर। अब आप कहते हैं कि उसने नहीं दिए, समझ गए, आप उससे मांग रहे हैं, वो कह रही है मैं नहीं दे सकती मैं गरीब हूँ। अच्छा, आपने पढ़ लिए कर्ज़ देने के बहुत से फ़ायदे, मुद्दत बढ़ाते जाएंगे, हर दिन इतना सदका देने के बराबर, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आप जब तक उससे लेने की नीयत रखते हैं ना, तो स्टिल यू नीड टू पे द ज़कात। 5,000 रुपये आपके किसी के पास हैं और वो दे नहीं पा रहा, और आप कह रहे हैं कि मैंने लेना है, तो हर साल आपको उन पैसों की ज़कात देनी पड़ेगी। सवाब तो इधर से मिल रहा है और उधर क्या होगा? ये भी सवाल किया ना कि पहले अपने ऊपर कर्ज चढ़ा के फिर हम कहते हैं कि अच्छा जी दूसरों को कहें कि अब हम पे खर्च करें क्योंकि हम गरीब हैं। तो किसी ने किसी का उस्ताद से सवाल किया था ऐसा इसी किस्म का, कि जिसमें वही बात चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तो उन्होंने एक वाक्या सुनाया था कि एक शख्स था, तो उसने क्या किया कि एक बाग में से सेब चोरी किया, ठीक है 10 सेब चोरी किए या जैसा भी सिनेरियो था। अच्छा खैर, एक सेब चोरी किया, अब मालिक को पता चला, उसने जाकर उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। तो जब उसका मुकदमा चल रहा था, तो जो चोरी करने वाला था वो जब लाया गया, तो उसने कहा कि देखें काजी साहब, स्टिल मेरा हक बनता है। कहा वो कैसे? कहा देखो, मैंने इसका एक सेब चोरी किया ना, तो उस सेब को चोरी करके मैंने सदका दे दिया, तो अल्लाह ताला एक देने वाले को 10 का बदला देता है। तो वो एक चोरी का सेब जो था उसको मैंने जब सदके में दिया, तो मुझे 10 सेब सदका करने का अजर मिला, तो उन 10 में से 1 इसका था, 9 मेरे थे। बस समझ गए ना? समझ आई? तो गाड़ी में घर जाते हुए सोचिएगा अच्छा वक्त गुजरेगा। यानी बाज़ दफ़ा हम इस तरह की नेकियां लेना चाहते हैं, दूसरे की नेकी चुरा के सदका कर दें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह से जमहूर उलमा के नज़दीक कर्ज़ ख्वाह अपने दिए हुए कर्ज की ज़कात देने का पाबंद है, मकरूज़ को भी कर्ज़ के माल की ज़कात अदा करने का पाबंद करने की सूरत में एक ही माल पर 2 दफ़ा ज़कात वाजिब होगी, जो कि शरण दुरुस्त नहीं है। ठीक है, ये कौन से अम्वाल की बात हुई? बातिना, यानी सॉलिड मन चीज़ें। अब आगे देखिए दूसरी काइंड, पहली क्या थी? बातिना, अब क्या है? ज़ाहिरा। ज़ाहिरा में क्या था बोल दीजिए शाबाश। जानवर, फ्रूट, खाना। अब इसके ऊपर ज़कात कौन देगा? दो चीज़ें थी ना इसमें, एक स्कॉलर्स का ग्रुप कहता है कि वो ज़कात देगा जिसमें कर्ज लिया, दूसरा कहता नहीं देगा। तो पहले दलाइल हम कौन से पढ़ेंगे? जो कहते हैं कि ज़कात देगा वो मकरूज आज़ाद मुसलमान और साहिब निसाब होने की बिना पर दीगर मुसलमानों की तरह, जिस तरह इन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, इसलिए इस पर फ़र्ज़ होगी। दूसरी वजह वो कहते हैं कि अम्वाले ज़ाहिरा पर ज़कात की फ़र्ज़ियत निस्बतन ज़्यादा मौक्किद, मौक्किद क्या? जिसकी ताकीद है। फ़ुकरा और मसाकीन की निगाह ऐसे मालों पर कदरे ज़्यादा होती है, और इन्हें इनकी ज़कात में से कुछ हासिल होने की तवक्को ज़्यादा होती है, इसलिए इस्लामी हुकूमत के उमाल, उमाल कौन होते हैं? ज़कात वसूल करने वाले। देखिए आप अरबी में आप उमाल को अमाल पढ़ लें तो मानी बदल जाएंगे, अमाल पढ़ लें अलिफ बन जाएगा, इसलिए प्रोनाउंसिएशन बहुत अहम होता है उर्दू पढ़ते हुए। तो इसलिए इस्लामी हुकूमत के उमाल इन्हीं की ज़कात की वसूली के लिए जाते हैं। अम्वाले बातिना की ज़कात देने पर ना वो किसी को मजबूर करते हैं ना ही इसका मुतालबा करते हैं। अब ये दोनों में तरजीह, तरजीह क्या थी? रजा से ना, तरजीह। दोनों आरा में से किसी एक को तरजीह देने से पहले दोनों तरफ के दलाइल पर गौर व फिक्र करते हैं। चंद दलाइल कैसे? मकरूज़ पर कर्ज़ वाजिब होने की पहली दलील कि वह नसाब का मालिक है, महल नज़र है, इसकी नसाब की मलकियत महज वक्ती और ज़ाहरी है, हकीकी नहीं। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास बकदर नसाब नकद या मवेशी या गल्ला या कोई और चीज़ हो और इसके ज़िम्मे कर्ज भी हो, और जब हम कर्ज़ की रकम या इस चीज़ को इसके पास मौजूदा चीज़ या रकम से हटा देंगे, तो वो साहिब नसाब नहीं रहेगा, और किसी शख्स की हकीकी हैसियत तो इसके ज़िम्मे वाजिबात निकालने के बाद ही मुतय्यन होती है। बात वाज़ेह कि जो उसके पास माल है इस वक्त, लेकिन अगर हम उसको अलग कर दें, मिसाल है किसी के पास इस वक्त 8 तोले सोना, अब जब वो 8 तोले सोना है तो इस वक्त तो वो साहिब निसाब बना हुआ है ना, ठीक है, लेकिन जब मालिक अपना असल सोना उससे ले जाएगा जो 4 तोले था, तो 8 में से 4 चले गए तो 4 रह गए, तो वो तो निसाब 7.5 तोले से नीचे चला गया। ये बात हो रही है। फिर दूसरी, अम्वाले ज़ाहिरा वाले मकरूज़ पर कर्ज़ की ज़कात के दलाइल की असास अम्वाल की 2 किस्मों में तकसीम पर है, लेकिन इन दोनों के दरमियान हद फासिल कायम करना कठिन काम है, खुसूसन मौजूदा दौर में अम्वाले बातिना में शुमार किए गए बस अम्वाल अम्वाले ज़ाहरा से कुछ कम या नहीं। फैक्ट्रियों में तैयार की हुई मसनूआत, दुकानों में सजाया हुआ सामान तिजारत और मंडियों में जमा की हुई तिजारती चीज़ें किसी तौर पर अम्वाले ज़ाहरा से कम या और वाज़े नहीं। इसके बरक्स मकरूज़ पर कर्ज़ की ज़कात ना होने के दलाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। इतने जो दलाइल हैं, इसके बाद क्या समझ में आया कि मकरूज़ पर कर्ज़ की ज़कात होगी, यानी दलाल है। अब इसके ऑपोजिट दूसरी सूरत क्या है, मकरूज़ पर कर्ज़ की ज़कात ना होने के मुतालिक अकवाल। ठीक है, चंद बातें और हैं, यानी बेसिकली ये एक इशू है, उसी का अब दूसरी चीज़ है। आपने कुछ वाक़यात पढ़ के अब मज़ीद इसको देख रहे हैं, और अभी तक हम सारी बात किस पे कर रहे हैं कि जानवर, क्रॉप, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर कुछ लगता भी है या ख़राब हो सकती हैं, उस सूरत में मकरूज़ उसकी ज़कात नहीं देगा। अब इसमें चंद बातें मज़ीद हैं। इमाम मालिक ने यजीद बिन खुसैफा से रिवायत नकल की कि उन्होंने सुलेमान बिन जस्सार से एक ऐसे शख्स के बारे में सवाल किया कि इसके पास माल है और इसके बक़दर इस पर ज़कात है, यानी उसके पास माल है और उसी के मुताबिक उसके पास ज़कात है। अलैहि ज़कातुन, क्या उस पर ज़कात होगी? तो उन्होंने कहा ला नहीं, यानी इमाम मालिक भी कहते हैं कि ज़कात नहीं होगी। इमाम इब्ने शैबा ने ताऊस से रिवायत नकल की, जब तुम पर कर्ज़ हो तो इसकी ज़कात अदा ना करो। इसी तरह तीसरा कौल इब्ने अबी शैबा ने अता से कहा कि इनसे इस शख्स के बारे में पूछा गया जिसके ज़िम्मे साल 2 साल का कर्जा है, पूछा गया क्या वो इसकी ज़कात अदा करेगा? अफा युज़क्की ही, उन्होंने फरमाया ला नहीं। चौथी दलील इमाम अब्दुल रज़ाक ने इब्ने जुरैज से रवायत नकल की, उन्होंने बयान किया मैंने अता से पूछा एक खेती वाले शख्स का कर्ज़ इसके माल से ज़्यादा है, क्या वो कटाई के दिन इसका हक अदा करेगा? उन्होंने जवाब दिया मैं नहीं समझता कि जिस शख्स का कर्ज़ इसके माल से ज़्यादा हो कि इसकी खेती या असल में कोई सदका वाजिब हो और वो खेती की कटाई के दिन भी इसका हक अदा नहीं करेगा, यानी ज़कात नहीं देगा। इसी तरह इमाम इब्ने अबी शैबा ने इब्राहिम से नकल किया जब आदमी अपने माल की ज़कात दे रहा हो तो देखे कि लोगों का किस कदर माल इसके ज़िम्मे है, इसको अलग कर दे, यानी लेन देन को अलग कर दे। इसी तरह इमाम इब्ने अबी शैबा ने फुज़ैल से रिवायत नकल की, लोगों का जो कुछ तुम्हारे ज़िम्मे है तुम इसकी ज़कात अदा ना करो। सातवीं दलील इमाम इब्ने अबी शैबा हसन से रिवायत नकल करते हैं, ज़कात का वक्त मालूम है, जब वो आ जाए तो वो अपने हाजिर और गायब माल का हिसाब करे और इस सब की ज़कात अदा करे सिवाय इस कर्ज़ के जो इसके ज़िम्मे हो। इमाम अब्दुल रज़ाक, ये आठवीं दलील है, सुफियान सौरी से नकल करते हैं, उन्होंने कहा जब तेरी खजूरें या खेती आ जाए, यहाँ ये नोट कीजिएगा कि फसलों पे ज़कात कब लगती है, जब फसल आती है, जब तेरी खजूरें या खेती आ जाए तो देखो कि तुम्हारे ज़िम्मे किस कदर पुराना या नया कर्ज़ है, इसको मनहा कर दो, यानी इसको काट दो, फिर बाकी अगर 5 बसक हो तो इसकी ज़कात अदा करो। तो वही बात है कि इवन खजूरों में से भी ज़कात जितनी देनी हो उतनी रकम को अलग करके फिर देखा जाएगा कि पीछे नसाब के मुताबिक है कि नहीं है। सारी गुफ्तगू का ख़ुलासा इसको हाईलाइट कर लें, क्योंकि लंबी बात होती है ना तो उसमें बात दफ़ा जहन इधर उधर जाता है। खुलासा क्या है कि किसी भी मकरूज़ पर ख्वाब वो वाले बातिना हो या ज़ाहरा, कर्ज़ की रकम या चीज़ की ज़कात नहीं है, अलबत्त ये ज़रूरी है कि इसके मकरूज़ होने का दावा दुरुस्त हो। देखिए यहाँ से आपको पता चला ना कि माल की सारी लाइबिलिटीज़ माल वाले की हैं। तो पैसे रखे, बंदा माल रखे, सोना चांदी रखे, लेकिन ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। तभी तो आपने वो हदीस सुनी होगी ना कि औरतों ने जब सुना कि आपने कहा कि ये जो कड़े पहने हुए इसकी ज़कात देती हो, कहा जब से ली हैं तब सख्त नहीं दी, तो आपने फरमाया कि जब से लिए हैं तब से गिन के इसकी ज़कात अदा करो। जो भी आप में से भी सवाल किसी ने किया था तो उसने कड़े उतारे, कहा अल्लाह के नबी ये कड़े ही रख ले, मुझे नहीं याद कि कितना रह गया क्या हो गया, तो आप इसको अल्लाह के रास्ते में लगा दो, क्योंकि आपने कहा कि ये आग के कंगन होंगे अगर इस पर ज़कात अदा नहीं करोगे। तो अब शादियों का जेवर अगर आप पहन रहे हैं, नहीं पहन रहे, बैंकों में पड़ा है, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। फिर लोग कहते हैं अच्छा जी माल को तो ज़कात ही खा जाती है ना उस बेला, वो दुख कब होता है जब ना पहनते हैं ना रखते हैं, तो वो जेवर की हर साल ज़कात तो जाएगी ना। तो यह चीज़ को इस्तेमाल कीजिए, किसी काम में लगाइए, ऐसी चीज़ों को सिर्फ बुत बना के छुपा देना, पाल देना, ये दुरुस्त तरीका नहीं, ये इंतहाई गैर इस्लामी तरीका है कि हमारे पास चीज़ें होती हैं और हमने बैंकों में रखी होती हैं। इससे तो बहुत बेहतर है कि आप उसको किसी काम में लगा दें। उससे कोई प्रॉफिट बना लें, कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीद लें, खेती बाड़ी के लिए गए, कुछ तो सदका हो आपके लिए। तो नफ़ा देना लोगों को हमने इंशाल्लाह सीखना है। बहरहाल इसके बाद इमाम अबू उबैद फरमाते हैं, जब कर्ज का होना पाया सबूत को पहुंच जाए, यानी सिर्फ दावा ही ना रहे, तो रसूलुल्लाह की सुन्नत की इत्तबा करते हुए जिन्होंने दौलतमंदों से ज़कात लेकर फ़कीरों को देने का हुक्म दिया है, खेती और चौपायों वालों से ज़कात साकित हो जाएगी। मकरूज़ तो ख़ुद ज़कात के मुस्तहकीन में से है, इससे ज़कात कैसे ली जाएगी? इसके अलावा वो गारिमीन में से है। गारिम कौन है? सूरह तौबा में आता है जिसके सर पे कर्ज हो। इसलिए दो पहलुओं से ख़ुद ज़कात का मुस्तहक है। सारी बात का खुलासा क्या है कि वो कर्ज जिसने देना है वो ज़कात नहीं देगा, जिसका माल है वही देगा। फिर सेकंड थिंग, क्या कर्ज़ देने वाला कर्ज की ज़कात अदा करेगा? अपोजिट आ जा गया ना, यानी यहाँ तक डन हो गया कि मकरूज़ किसी भी सूरत में ज़कात नहीं देगा, वो देगा जिसका माल है। अब वो किन शराइत के साथ देगा इसको देख लीजिएगा।